यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। व्याख्या यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद् योगैरपि गम्यते। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपर्युक्त पदों से दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो ये मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यह अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोग की प्रणाली सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद है और कर्मयोग की प्रणाली अपने लिए कर्म न करने की पद्धति है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की एक स्थिति होती है क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी अपनी निष्ठाएं हैं। तीन का तीसरा, संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है परंतु परमात्मा सम है। अतः सम रूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है, ऐसा समझकर असंग हो जाए ये ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, ये कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला कहते हैं विशेष बात, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है या जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। और जो नित्य निरंतर रहता है, उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न होता है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है, अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव हो सकता ही नहीं, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग, इन दोनों साधनों में से किसी एक साधना की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्मयोग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्मयोग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दे, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाए, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहाँ चौथे पांचवें श्लोक में, चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है पर कर्मयोग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण वह कर्मयोग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, योगो नष्ट परंतप। इसलिए कर्मयोग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्मयोग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 20वां अध्याय 9वां श्लोक। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए अर्थात ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण में श्रद्धा न हो जाए मतलब भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। उपर्युक्त चौथे पांचवें श्लोकों के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्मयोग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्वज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्म तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। जैसे तत्स्वयं योग संसिद्ध है कालेनात्मनि विन्दति, चौथे अध्याय का 38। योग युक्तो मुनिर् ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, पांच का 6। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, 4 का 23। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः, 4 का 19। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीं, 5 का 12। श्रीमद्भागवत में भी कर्मयोग को परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया गया है। स्वधर्मस्तु यजन यज्ञैरनाशी काम उद्धव नयाति स्वर्ग नरकौ यद्यन्यन न समाचरेद, 11, 20, 10। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अस्मिन् लोके वर्तमान है स्वधर्मस्तु नगशुचि ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मदभक्तिम वा यदृच्छया, 10, 20, 11। स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस श्लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्मयोग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान माने तत्व ज्ञान अथवा साध्य भक्ति माने परम प्रेम पराभक्ति प्राप्त हो सकती है।